That ek chiranjeev is, that what does it mean that they will be here till the end of Kali Yuga?
Eight chiranjeevis. Chiranjeevis, we must know the difference between chiranjeevis and immortal.
It's different.
Yes, it's different. Chiranjeevi, you will continue. There is a times frame within, or you continue to live. Okay? Chiranjeevi. Immortality is Amritatva. So there is a difference. Chiranjeevi basically means till the cycle. As long as this four, so in India, the what is believed, actually in other traditions also it was there. But India has preserved this truth that there are cycles of creation. So there is the four yugas, Satyuga, Treta, Dwapar and Kaliyuga. You may wonder, okay sir, ye padha hai, kya matlab kya hai? So human beings have these four components. The spiritual, the mental, the vital, and the... Come. You can take a chair. Okay, come. They are my friends from Delhi. So they are basically that the four cycles are, when in each cycle the divine works on one particular element of creation. For example, in the Satyuga, it is largely a spiritual tendency, spiritual aspects. So that's why in the age of truth. So in the age of truth, there is no law. Sounds very strange. Because the divine is present as Yajna Purush in the heart. So the law is within you, you discover it and you live. And human beings are so conscious that they go by the inner truth. Okay? So that is Satyuga, original Satyuga. The truth is in you. And it's not a format. Everybody must do the same thing, everybody must follow. There is no such thing in Satyuga. So Satyuga, the divine is present as Yajna Purush. Inside, there is the Yajna going on. So this is Satyuga. I'll come to Chiranjeevi, but you have to connect it with this. Then comes Treta. Treta is when the divine, because for reasons why the decline or so-called decline takes place, I'll come to it. It's an age when the mind becomes very prominent. So when the mind becomes very prominent, then it is the king who has to embody. So the importance of king, that's why Ram Rajya. The king has to be such that he embodies the highest truths. Others may not be, but the king has to be. Because others, everybody embodying it is Satyuga. So in Treta, there is the king. Then comes Dwapar. Now in Dwapar is the age of heroism, the vital parts in man, the life engages. So it's the called as heroic age world over. So you have the Mahabharata, you have... See, in Treta, basically there are the Asuras and mainly it is Lord Ram. But when you look at, and Lakshman of course... If you look at the heroic age, there's so many human beings who are each in their own right, tremendous vital. So during that time, now it's not one king who can govern. So there is a codified system of law. So you see in the court of Hastinapur, there is a great debate. Is Draupadi valid or not valid? Whether she should be the, they can be married or not, it's a big question there. Because if she is married and if Pandavas become king, then she becomes the Samragi. So the question is whether a woman who is married to five men can become Samragi. Okay, so there is a great debate that takes place in Kuru assembly much before Chirharan. And that is the time Draupadi uttered the most well-known Vakya, one of the Mahavakya which we use today, Dharmo Rakshati Dharma. Heard about it? That's when she says, because they want to defend us, she says, no, I know I am on the path of Dharma, Dharma will protect me. So she utters that and she argues her case. And while Bhishma, they all get confused because there is a code of law during that time. Then in Kali Yuga, now the working is on the most outer physical consciousness. So all codes, everything breaks down. Okay, so everybody is a law unto himself, but not that deeper law, but people do whatever they feel like. And that's how it is described. But why does it happen? Because if you really look at it carefully, all these four ages of mankind are a working that takes place on one aspect or one dimension. In Satyuga, it's largely spiritual. It's not an age when there are great philosophies. In Treta Yuga, you will find debates which begin. You know, in King's Court, Janak is often busy with debates. A lot of yogis come, rishis come. Then slowly that enters into the heroic age. You have to live those truths. And then the physical consciousness, where everything begins to fizzle out. But physical consciousness cannot be neglected or ignored. So when everything degenerates, then what will human beings do? Instinct, what will they do? Because man seeks the law of life, whether you like it or not. And all scriptures will always contain something which is deficient. They will not cater to all the challenges, especially modern challenges come up. So man begins to desperately discover for inner law, which is the original place of dharma. So he ends up again into a new satyuga, where he discovered the truth within him. Okay, this is how it is. Now there are people in each age who, for whatever reason, has lived the truth of that age. That's it. Not that they are living in ultimate truth, truth of that age. And therefore they are like models who can still guide. Because there are people who will, in every age, who are still belonging to, olden times. So they are meant to be like helpers and guide. That's how they say that Parshuram, one of the Chiranjeevis, continues to help those who are in that phase of evolution. Hanuman, Sugriv. Okay, so these are the guides of mankind who are present in the subtle physical. Obviously they are not in the physical. To try to search for Ashwatthama in Narmada banks is, if they are in the physical, by now they would be known. But in the subtle physical world, yes, they are allowed to stay. And then comes the great dissolution, pralaya. Then they also go away. Then comes a new cycle. So there have been six cycles till now. So why does the cycle dissolve? Why does it come to pralaya? So there is a very interesting logic to it. It's not like God is taking fun, I take it, dissolve, it's just a play. It's a play with a purpose. So we can go to a miniature, when to understand the cosmos, you can also understand a miniature replica. So, because everywhere the basic principle is the same. So let's take the life of one human being. Okay? So it starts with childhood, grows into adulthood, then old age, then death. So in each age there is an aspect on which things are working. If there is little bit of psychic impulse, there will be touch in childhood. That's why children are so beautiful. They speak truth. Unless they get corrupted thoroughly. They don't say, this is mine. Unless they get corrupted. They easily can, because they don't have this frameworks. Then they have to master life. They have to take the challenge. They become like king. Towards that they must move. Then once they enter into the middle ages, then there are rules and regulations which everybody follows. The vital. And then they finally, physical is not able to. So always the problem has been the physical. The physical life of man has remained unchanged. So the moment the working start, the divine working on the physical consciousness moves outward, then things degenerate. But it's very challenging. It's all part of the divine plan. That's why there is something very interesting spoken about Kali Yuga. It's there in Bhagavad Purana, because that's the setting when Kali Yuga is beginning. Okay? So they say Kali Yuga is so horrible, so bad, you will hear, no, everywhere. So what does the scripture speak about Kali Yuga? Actually in Bhagavad Purana, Narad says, looked at one way, yes, but it has a great advantage. So we had read it in the form of, as a child, in a form of a doha. I'll say that doha. Same thing is presented in Bhagavad through a Sanskrit sloka. It says, Kali Yuga, Jog, Jog is, Yog is like, you know, Yaja, you know. Kali Yuga, Jog, Na Jap, Na Jnana. Kali Yuga, Yog, Na Jap, Na Jnana. Ek Adhar, Ram Gungana. Just the name of God is enough. Because you are in extreme challenging, physical consciousness is most obscure. There is nothing like faith in the physical. It says, I don't see, therefore God doesn't exist, I don't hear. And all the challenge, because body is the most difficult fold. But every time in Kali Yuga, actually the divine working takes place on the body. It is able to take it to a point, then it's not able to bear. So same thing like an individual person. In old age, don't think that the person has grown old. It's only physically that the person has grown old. So his capacity to manifest, to progress, even inwardly, becomes limited because of the physical. Kana wo hai, aag rehti hai, lekin wo, the, what is said in the Bible, no? The spirit is willing, but the flesh is weak. So there is death. So same way the cycle of four ages dies. But the gains are always carried on. So the Chiranjeevis are an example that the gains, essential gains, are not lost. There are people who bear that chain, that gains. And therefore when a new cycle comes, you will see each of the Chiranjeevis is given a new status. Like Ashwatthama will come back as one of the masters in the new cycle. That's how it is said. And again, Manu. So somebody will become the new Manu. Like King Satyavrat becomes the Manu in the next cycle. So they are not just waiting. They are waiting to carry on. Why they are given? It's not like a status and position. Okay. You have waited so long. You have been a good guy. There are people who carry the best of a certain age. And they are preserved to carry the best, because otherwise everything will be lost. So in Pralaya, everything is never destroyed. But much of the things are destroyed, and there are those who have carried the height of whatever a particular age of mankind could give. Same thing happened in death. Death doesn't destroy everything. The essence is carried by the psychic impulse and comes back into a new life. So the Chiranjeevis are those who are, and there would be many more. Okay, don't just, we should not limit ourselves to tradition. So there would be many more who are carrying the best of that age, which is picked up and fused into the new age. That's what the story means, that they are given a new charge, as they say. Then a new cycle begins. Now the interesting part is, the mother says this, and there are some other traditions, that this time, this is the sixth cycle. Now the seventh cycle is, this is the seventh cycle, spiritually the seventh cycle. But if you see science, then probably six. Science speaks of complete destruction. So now in this cycle, of course science doesn't talk about mankind's different ages. So in this cycle, it's not supposed to be destroyed in that way. Large chunks will survive, save, and will go on to the new age. So age of Pralayas is over. And that's why the name of Manu changes. Now onwards, they will all be more or less, if you see, they are all Dev Manav. I'll have to see all their names which come, but once I had done this work. So this is the Shraddha Dev. Then all of them are Devs. The Manus that are going to come are some Devatas. Devata means godlike humanity. So that's where these gains get integrated into the new creation, the new Srishti which follows after Pralaya. So in mythology it is shown as, whether Noah's Ark or King Satyavrat, that they kept a pair of all the animals and the rishis. That's how it is described. In the boat, very picturesque, and then the boat is going on the floods, and then it crosses over. They made a movie on this, no? Mohenjo-Daro. I mean, they didn't understand a word about what Pralaya really means. So, but this is what it is about the Chiranjeevi. Chiranjeevis are those elements which have lived the height of that age, are now ready. It's like you are ready now for the next level, but there is no college existing as of now on earth. So then in a new cycle, you are given a new possibility. Okay, you build the college. You have waited. That's the Chiranjeevis. It's not just ki some fanciful thing. So Ashwatthama, for example, he has learned a lesson. In Dwapar, it is Ashwatthama who carried. Imagine. He had a great possibility. He was very nice at one point of time. But greed took over him. Moha took over him. And then at the end, revenge and all that took over him. So he has been given shrap. So he continues to... It's very interesting that Sri Krishna doesn't give him shrap forever. Most people say, na, amesha ke liye nahin. It's for 3000 years. So once he is freed, it's a learning period. And after that, now even he has learned so much. He's a person who has seen the whole thing alive. So what he would have, he would be the student who has really learned maximum. So he will, it is said, prophesied that he comes back as one of the leaders of the new age. I mean the new Satyam, new cycle. Of course, they don't have the concept of supramental transformation. That's that what Mother Swabindu says. Why there will be no dissolution? Because mankind will cross a certain barrier. Now it happened. I give this example of Chakka Gumana. Right? This hammer through anything. So you take a something attached to a string. If you have to throw it far, what do? You rotate. Now you are gaining momentum, pure physics. And a time comes when you throw. Now first time you don't throw. That's why in all these Olympic and other, you are given 3 chances. Here we are given 6 chances. Fair enough. So mankind picks up and tries to throw. There is a borderline which it has to cross. For entering that phase for which all of us dream. That phase is the ideal kingdom of God, kingdom of heaven. Shelley speaks about it. We speak about Ram Rajya. Even interestingly, Islam speaks about it. The coming of Mahdi, the second coming Krishna speaks about, Christ speaks about. Basically, it all refers to an era when there will be forever peace and joy. So if you exclude the Mayavadis say, no, it's illusion, which makes a whole absurdity of everything. But there is in India a parallel thought, in every culture actually. But they have lost it, we have preserved it, that there will be an age of truth and which will not be subject to degeneration anymore. So, all this is chakka phek. Understood the analogy, na? In that chakka phek, what happens? You have, sometimes it looks like, oh, that is far in front. Then it goes behind. So, that's how the cycle. So, there are many, many chatur yugas in every yuga. And then finally, it takes a final leap, plunge. How far it will go? Also, it depends on mankind, but this time, what we are told by Mother Ishwarbindu, and I have reasons to believe it, I have given talks on this issue, mankind will cross a critical barrier. So, now, interestingly, who will be the harbingers of the change? Not those who are stuck to the past, because they have been broken down with a purpose. It has to enter a new Satyug. What is the law of Satyug? Discover the truth within your heart. So those children who have broken free from the past, but at the same time they want to understand or live this greater truth, are the right candidates, best candidate. Not those who are still living in Treta Yuga and Dwapara Yuga. That age has gone. You can't recreate that. Srishti aage jati hai aur Bhagwan bhi aage badhte hai. Is that clear enough? So, sir, next question.
Is astrology and numerology part of Vedic tradition?
Yes. Vedic, all sciences are part of Vedic tradition. So, what is Veda is not just about a disconnected spirituality. Vedic age is that age when mankind approached the truth in as many ways as possible. Geometry, mathematics, astrology, and they went as far as it could lead them. Very far. But why this question comes in today's times? The reason is that later on, post-Vedic age, when intellectual age came, as I said, Vedic age is a Satyo. They were discovering the truths within and applying it everywhere. It's applied truth. All sciences in their fundamentals are applications of truth that you discover. But when it came into this Treta Yuga, intellectual age, then they wanted intellectual statements. And that's when the Upanishads created. Upanishads are part of Vedas. So there were rishis who said, oh, this is too much, too complicated. Let's touch the core. So what was the core? The core is divine. From there everything flew. So they said, we don't want paraphernalia, we just want divine. That's why, what are the Upanishads also known as? Vedanta. End of the Vedas. So they said, all this is too complex, too much. Marriage kaise hoga? Wo kaise hoga? Everywhere you have sanskaras, Vedic sanskars. From womb to the tomb and further. The Vedas, based on their own occult knowledge, there are certain rituals, certain practices. They are very beautiful, many of them, I must say. But now people want to know, okay, all that is fine, but I first want what is really the ultimate thing, because you get lost in all the details. So that's how Vedanta came. Now this becomes very appealing to the intellect. And especially in today's times when all this has degenerated, so people don't connect so much. They connect much more with Ishavasyam idam sarvam yat kincha jagatyam jagatena taktena punjita. Okay, fine. I have to find that one. And that's important. So in that sense, Vedanta is important because in the mass of the Vedas, it preserved the core. Bhai, isko mat bhulna. But if you keep only the core, then there is a problem. That's why the Mayavad came. For example, I got a marriage card from a friend from my FMC days. So he sent me a card. He had a little bit interest in inclination in spirituality. So actual marriage card came. Priya Atman. Yeh Atman. Us Atman se vivah karne wali hai. Kripya Atman padharein. Maine kaha Atman yahi se. Atman khana thodi khayegi tumhare yahan priti bhoj. So it, because you know, there is a need to, life is there. But if you see pure Upanishad, it ultimately will lead you to that state. Okay, that's the main thing. Why should I bother about the rest? So the Kain Upanishad, except Isha Upanishad, all of them tend to take you towards otherworldliness. As we said, Kain Upanishad, no? Yanman Sana Manute. So at the end of the day, though it was meant to preserve the deepest truth, that don't forget this in the mass of all the science. Fundas mat bhulna, fundamentals. People remember the fundamentals very well, and to the extent that they forgot that everything is sacred. In India, they have preserved still, to the credit, I mean. So if you go into the Vedas, you will find root of everything, including astrology, very much. There are rishis to whom it is attributed. Viman Shastra, I have shared this. Pushpayur Veda, healing through flowers. Viman Shastra, so Bharatwaj Rishi, I have seen the book. Okay, so he has written about aircrafts. And he writes about the type of dhatu you have to use. Mantra chalit, tantra chalit, yantra chalit, pure mechanical. So people often ask me that, but we don't see any of them. I said, yes, but somebody conceived it. Because it's there, that there is a possibility. That conception is not some ordinary thing. I mean, we appreciate Da Vinci making aeroplanes, this thing. So you must also appreciate that somebody conceived. Even conception is not easy. Thousands of years back, you are conceiving that, and actually he has laid a roadmap to the future aircrafts. Even about the pilot, not everybody is fit to fly a mantra with the aircraft. So he has opened the door. As a rishi, he had the vision. Same, of course, Ayurveda, and then, and they are all very wonderful things. So for everything, you will find the seeds are in the Vedas. Development will depend on, you know, how many, what, not that everything they could do. Geometry, Vaisheshika is part of Vedas, no? Vedant ke saath mein, ye jo chhe schools of systems hai. What is Vaisheshika? Vaisheshika is all about atoms, Kanad Rishi is associated with that. That is part of the Vedic lore. That's all. Atharveda is all about occult sciences. So seeds are there, not that it's developed fully, but seeds are there, people picked up subsequently, developed it into a full-fledged science. Geometry seeds are there, arithmetic, everything seeds are there. I hope you know that the Veda is one literature, not four is, you know the difference, no? Normally you say, na, char ved hote hain, stories hain, Brahma ji ke char mukh. Actually, basically, Vedas are experiences recorded by the rishis. So originally they went by the name of the rishis, hymns of these rishis. Now, out of the Rig Veda, now what? Rishi Veda Vyas, because he knew that he was a great codifier. So many systems he codified. He was a person almost to the obsession point of codifying. So it is he who classified, took out certain hymns which relate to yajna from that whole body. To his credit, so much work, no? And then he said, okay, this is Yajurveda. The rishis did not write like that, ki, amai Yajurveda compose karo, aisa nahi hai. They are all spiritual experiences, one literature. But Vedavyas, toward the end of Dwapar, he codifies it. So you have Rig Veda, the most ancient Rigs, about the Jnana, most. Then Yajur Veda about Yajna. So you have seeds of Karma Yoga later on. As such, Karma Yoga is not developed there, but the Yajna, all the hymns, most of them are from the Rig Veda. Some 10% are by the other Rishi. Then Bhakti, so Samaveda. Samaveda is those which you can sing in adoration. They are all part of single Vedic lore. And then you have different paths like Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga. But originally it was one. See, when Sri Aurobindo speaks of aspiration, many people don't understand. Because in origin in the Vedas, you have the fire which leads you to all these gods and higher powers. This idea that this is Karma Yoga, this is Raj Yoga, it came later. It has its place for those who want to take out a narrow path. It's like Vedanta. Okay, I want to find the reality. You pick up one of the Vedanta. But Ishopanishad is a very big challenge for everyone because it speaks of this world, integrating it. So that becomes Vedanta. So since we are speaking of Ved and Vedanta, what else is there in Indian literature? Ancient literature, heard about Aranyaks. Aranyaks, they are the another body of literature. Brahmanas and Aranyaks. So Brahmana is not about Brahmana. So Brahmanas are basically the deeper interpretations of the Vedas. Subsequently, so Brahmanas. And Aranyaks, thus forest dwellers. So these people took up again the essence of the Vedas and they came up with their own understanding. So there are those who preserved the rituals, Brahmanas preserved the rituals and Aranyaks preserved the knowledge. So one very famous Aranyak, which is regarded as an Upanishad in its own right, one of the must read, very very big but must read. It gives the image of the horse, cosmic horse. Horse is always a symbol of force. So the cosmic horse, whole universe is seen like that. And it's called as Brihad Aranyak. So Brihad is vast. Brihad Aranyak Upanishad. So it has very interesting stories. The story, for example, of Yajnavalk and his two wives. So Maitri and Gargi. So once he says, I am going to forest because I want to engage deeper into meditation. So I want to be all alone. Good choice. But he divides his Katyayani and Gargi, Maitri. Gargi is his friend. So he divides into equally. So he asks Katyayani, he says, I am satisfied with whatever you leave for me. Maitri says, what is prompting you, who is already so well known, who has riches of all kinds, to walk into the forest? There is some secret you have not shared with us. He says, yeah, of course, there are always secrets one doesn't share. She says, but I want to know that secret. So she asks a question. Heard about this famous Maitri Yajnavalk Samvad? It's part of Brihadaranyaka. I'm just giving you a taste of what. She asks, why does one love the wife? Why does one love the child? Quite naturally, you know, she's saying, why did you love me? Why does one love the country? Okay. So guess what Yajnavalk would have said. He says, O Maitri, one does not love the wife for the sake of the wife, but for the sake of the self. One does not love the child for the sake of the child, but for the sake of the self. One does not love the country for the sake of the country, but for the sake of the self. Now what he doesn't say, Maitri understands. As is the self, so is your love. So we see our image, now in modern psychology, we see our image in the person and that part we love. But that person has many sides, which we discover sadly too late. But if you live in the higher self, the divine self, then you can truly love, because then you are loving that divine presence which is in everyone. It will not be subject to change. Have you read Shubhindu? You won't have read Shubhindu's poem, Immortal Love. I'll read it, okay? So, basically it is, as is your self, so is your love. Feel its implication? And in a certain sense, world is a mirror. You see yourself in the world. That's it. For good or for worse. If you have discovered the divine within you, you see the divine much more often in the world. If you are always full of fear, you will see everybody is an object of fear. Samajh aaya? Psychological formula. Understood? This is the formula. As we are, and if you are full of fear, even in divine you will see fear. इसको हमारे तुलसीदास जी ने बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से बताया है. श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनक की सभा में जाते हैं. किस लिए? क्योंकि इनवाइट भेज दिया गया उनको लास्ट मिनट धनुष यज्ञ के लिए. सो यू नो व्हाट, सो ही डिस्क्राइब व्हाट आर द रिस्पॉन्सेज ऑफ ऑल दोज हु आर प्रेजेंट. तो जितने भी वहां ऋषि मुनि हैं वो उठ के प्रणाम करते रहे. तो लगता है साक्षात भगवान विष्णु आ गए. ओके, वहां पे जितने भी ऑर्डिनरी विलेज फोक है वो कहते हैं अरे इट्स द परफेक्ट मैच फॉर जानकी, बट सुकुमार हैं, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे, ये राजा जनक बहुत खराब है, ऐसा क्यों रख दिया उसने, जानकी के लिए तो यही आइडियल है, बट दे कांट पिक अप द धनुष. सुकुमार है जो राजा है वो थोड़े घबरा जाते हैं. जब राम लक्ष्मण आते हैं तो कहते हैं ये तो लगता है कि हमको हरा सकते हैं, ये साधारण वनवासी नहीं है. दे फील लिटिल बिट एप्रिहेंसिव एंड द असुराज दे नो दैट देयर एंड इज नियर. दैट्स हाउ इट इज डिस्क्राइब्ड सावित्री में, ये बुक 6 कैंटो 1 में, एज नारद सैंग. सो वी सी इन द वर्ल्ड ए प्रोजेक्शन ऑफ असर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार लोग कहते हैं ना अरे यू शुड लर्न, दुनिया में लोग ऐसे हैं वैसे हैं, तो तुमको भी थोड़ी चतुराई आनी चाहिए, लोगों को मूर्ख बनाना आना चाहिए. बेसिकली दे डोंट से समथिंग वर्ड. मैंने कहा वो तो बदलते नहीं मुझे देख के, मैं बदल जाऊं उनको देख के, ये क्या लॉजिक है. यू शुड नॉट डू दैट. इट डजंट मेक सेंस. इफ डिवाइन हैज मेड यू फुल ऑफ ट्रस्ट एंड लव, यू शुड बी फुल ऑफ लव एंड ट्रस्ट. दैट्स योर वे ऑफ लाइफ. स्वधर्मो निधनम श्रेया पर धर्म व्या. पीपल विल फूल यू, इट्स ओके दैट देयर कर्म देयर धर्म, लेट देम डू. ओके, अंडरस्टूड दिस डिफरेंस. नाउ वी कम टू लव. सो ये मैत्री और याज्ञवल्क्य का संवाद है. तो फिर मैत्री बोलती है कि ये जो तुमने आधा मुझे दिया है ना प्रॉपर्टी, ये नहीं चाहिए मुझे. कहते नहीं नहीं रख लो, कुछ और चाहिए. कहती नहीं, ये जो तुम बता रहे हो ना ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी. आई विल अकंपनी यू इन द फॉरेस्ट, आई विल टेक केयर ऑफ यू, बट आई वॉन्ट दिस ट्रूथ. अब सोचिए इस कहानी में क्या क्या भेद है. कम टू टूडेज टाइम, सेम थिंग यू फाइंड इन च्यवन ऋषि स्टोरी. टूडेज टाइम, व्हाट डज ए पर्सन. अभी आज ही कोई बात हो रही थी, कोई इसकी बात कर रहा था, कह रहा था रिश्ता आया और पता नहीं क्या क्या रिश्ते आते ही रहते हैं लोगों के, पता नहीं क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय रिश्ता. बट एनीवे आई मीन मोस्ट स्टूपिड थिंग रिश्ता है. तो कहते हैं कि वो पेरेंट्स कहते नहीं पर वो इतना कमाता है, ये कमाता है. कहा यार पैसे देख के शादी करनी है क्या. है ना, यही सब देखते हैं, शकल सूरत पैसा पता नहीं क्या क्या देखते हैं. आई डोंट नो, सिली नो एंड स्टूपिड. सो कहानी में ये भेद छिपा है कि भाई अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कंपेनियनशिप में वेदर यू शेयर दैट एस्पिरेशन दैट फ्लेम इन द हार्ट. अब खुद ही आग ना लगी हो तो बात अलग है, लड़का भी पैसा ढूंढ रहा है, वो भी पैसा ढूंढ रही है, दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, ठीक है, एंजॉय लाइफ. वो एक अलग बात है, बिकॉज नाइदर हैज फायर विद इट. तो वो इग्नोरेंस में खेल चलता रहता है, उसमें ये सब उठा पटक कुछ नीच. दैट्स पार्ट ऑफ द टू गिव अस एक्सपीरियंस. बट द डे यू डिस्कवर द फायर, देन हु विल वॉक विद यू टिल द बॉडी इज एंड, दैट्स हाउ इट इज डिस्क्राइब, हु कैरीज दैट फायर इनसाइड. ओके, सो इसको इस कविता में श्री अरविंद की पोयम है इमॉर्टल लव. आई जस्ट रीड इट. ओके, इमॉर्टल लव. इफ आई हैड वोट दी फॉर दाई कलर रेयर, चेरिश द रोज इन दी और वेल्थ ऑफ नेचर्स ब्रिलियंट्स इन दाई हेयर, ओ वुमेन फेयर, माई लव माइट सीज टू. मान के चलो जो सकल सूरत पे फिदा हो रहा है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा. मान के चलो ये डेटेड है, इसकी एक्सपायरी डेट आज ही लिख दी गई है. ओके, और हैड आई सॉट दी फॉर दाई वर्चुअस यूथ, फिर लोग देखते नहीं अंदर की क्वालिटीज, एंड टेंडर यर्निंग स्पीच, दाई स्विफ्ट कंपैशन एंड डेलिबरेट ट्रूथ, ओ हार्ट ऑफ रूथ. रूथ इज अनदर वर्ड फॉर लव, तभी वो वर्ड आता है रूथलेस, ये सुना होगा ना, रूथलेस. सो रूथ इज लव. ओ हार्ट ऑफ रूथ, टाइम माइट परस्यू माइट रीच. अगर तुम्हारी क्वालिटीज के लिए या तुम्हारे अंदर जो स्पीच में जो एक्सप्रेशंस हैं वो सुंदर हैं, हो सकता है कि ये चले हमारा प्यार पहुंच जाए थोड़ा रिटायरमेंट प्लानिंग तक. But I have loved thee for thyself indeed, not for what you have, but what you are. ये स्टोरी है चवन ऋषि की. तुम लोग थे कि नहीं थे पता नहीं, perhaps you were there. चवन ऋषि and that lady, no? तो ये स्टोरी है. But I have loved thee for thyself indeed, and with myself have snared. I've taken a chance. Myself have snared. Snared होता है कि फंस जाना. मैं किसी और ने नहीं फंसाया मुझे, मैं स्वयं ही स्वीकार कर रहा हूं इस स्नेयर में फंसना. क्यों? अब यहां पर उसका गुड सेंस है. इमॉर्टल टू इमॉर्टल आई मेड स्पीड. देखने वाले सोच रहे होंगे कि बाहर बाहर बाहर, लेकिन नहीं, मेरे अंदर जो इमॉर्टल एलिमेंट है वो उसके इमॉर्टल एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है. चेंज आई एक्सीड एंड एम फॉर टाइम प्रिपेयर्ड. वो जो हमारी मित्रता है, जो हमारी प्रगाढ़ता है, जो हमारा सो कॉल्ड विवाही कह लो, वो अब बदलाव के परे है. हमारे संबंध में कोई भी चीज बदलेंगे कितनी भी, क्योंकि कोर में हम एक हो गए हैं. तो ये मैत्री और यज्ञवल के संवाद ऐसे बाहर से लगता है केवल इतना ही है, इसमें क्या बात है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, बहुत प्रफॉर्म है. तो ये बृहदारण्यक का एक हिस्सा है. तो यह अरण्यक्स या ब्रह्मणास, ये सारे आते हैं अंडर द लार्जर वैदिक लिटरेचर, जिसको कहा गया श्रुति. श्रुति क्यों कहा गया? हर्ड मतलब, हर्ड के दो सेंस है यहाँ. एक है कि वी रिसीव फ्रॉम द लोअर फ्रॉम अदर्स, एंड सेकेंड इज इंस्पायर्ड स्पीच, हर्ड. ये हमारे अपने अनुभव हैं. उसके बाद आती है स्मृति. स्मृति इज वी रिमेंबर इट, दस इट वॉज सेड एंड देन यू हैव इंटरप्रिटेशन. उसमें आते हैं ये पुराणास, पुराण जितने भी हैं स्मृति. सो जो श्रुति है उसको ऑथेंटिक माना गया है, वो रियलाइज्ड लोगों के हैं. और जो स्मृति है उसमें देर इज ऑथेंटिक एलिमेंट, देर आर मिक्सड एलिमेंट, देर आर सिम्बॉलिक एलिमेंट्स, जैसे हम लोग भागवत पुराण भी कर रहे हैं. फिर आया इतिहास. इतिहास क्या है हमारे यहाँ? What is it? महाभारत एंड रामायण. इसको इतिहास क्यों कह के आपने बंद कर दिया इतिहास के पन्ने? इसको तो मिथ कहते हैं लोग. ये इतिहास यही रिपीट होता है, कोर स्टोरी यही है. रावण का साम्राज्य, प्लंडर लूट, राम की जागृति, वनगमन, अंत में रावण पर विजय, ये इतिहास है. इन एवरी एज इट रिपीट्स इन काउंटलेस वे. सो उन्होंने कहा हम कोर बता दे रहे हैं, बाकी तुम अपना करते रहो, इसको अप्लाई करते रहो. सो ये इतिहास. अंडरस्टूड नाउ द एंटायर सनातन धर्म के लिटरेचर. ऑफ कोर्स देयर आर मेनी सेंट्स एंड सेजेस जिनकी लोअर है, बट बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल.
सर, आई हर्ड अबाउट गरुड़ पुराण.
मृत्यु की बड़ी भयानक भयानक. सो उसमें ये गरुड़ पुराण इज ए वेरी इंटरेस्टिंग पुराण. अगेन यू डोंट हैव टू टेक, एज आई सेड, इट्स नॉट अ पुराण विच देयर इन पुराण नॉट ऑल आर ऑथेंटिक. सो ऑथेंटिक पुराण इज विष्णु पुराण बाय कंसेंसस ऑफ द योगीज एंड श्रीमद भागवत पुराण इज कंसिडर्ड एज ऑथेंटिक पुराण. इवन शिव पुराण एंड अग्नि पुराण आर नॉट कंसिडर्ड द अल्टीमेट ऑथेंटिक. बाय ऑथेंटिक आई मीन कि सब बातें सही हैं, ऐसा नहीं है. देयर आर मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स, पिक इट अप. बट एवरीथिंग इफ यू टेक इट एज अक्षरशः. बट विष्णु पुराण एंड भागवत पुराण इज वेरी वेरी डीप, प्रोफाउंड, वेरी ऑथेंटिक. एंड इवन यू कैन अंडरस्टैंड देम इन योर ओन लाइफ एक्सपीरियंस. भागवत पे हम लोगों की तो चल ही रही है. ये नहीं जैसे प्रेजेंट किया जाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. वो तो एक क्या का क्या बना देते हैं, वो एक अलग बात है. सो आवर इंटरप्रेटर्स हैव द आर्ट ऑफ टर्निंग ए स्वान इनटू ए किंगफिशर. उसकी तो बात ही छोड़ दो. सो गरुड़ पुराण इज लाइक दैट. सो वाई इट इज लाइक दैट, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट वट हैपन्स आफ्टर डेथ विद 100% ऑथेंटिसिटी. Because the Rishi is still living and he can have occult vision without a doubt. But the Ved describes in gory detail. So my own understanding of Garuda Purana, there are some truths there. But a lot of things have been added because these Puranas are much more recent. And added partly because many of the Purana, if you read them carefully, you will see ki Islamic invasions ka ek kahin na kahin mansikta par prabhav padha hai. So uski दो असर हुए हमारी पुरानी लिटरेचर पुराण पर, नॉट ऑन रामायण महाभारत और फर्दर. सो वन इज दैट इट गॉट टेंटेड, कॉन्टेमिनेटेड. एंड सेकेंड इज देयर वाज ए डिफेंसिव एलिमेंट. तो अब इस्लाम में क्या है, बहुत ज्यादा है ये. तो हेल हेवन का कंसेप्ट टिपिकली वेदों में नहीं है. इसलिए ये जो जितनी भी ये स्मृति लिटरेचर है उसमें ऑथेंटिसिटी को कैसे डिसाइड किया जाता है. हाउ डू यू डिसाइड, हाउ डिड द पीपल डिसाइड, डू यू हैव समथिंग कोरेस्पॉन्डिंग टू दैट इन द वेदास. सो यू गो बैक टू द वेदास. यू कैन डेवलप, वेदा इज नॉट लाइक लास्ट वर्ड, बट इट हैज द फंडामेंटल फाउंडेशन. यू डेवलप ऑन दैट, बट वॉट इज नॉट देयर एट ऑल एंड यू सडनली सी इन ए पुराना, देन यू हैव टू डाउट. अब जिस सिन की बात वेद नहीं करते, उस सिन की बात नहीं करते, वो करते अनृतम. It's very different. Anrit is, rit is connected with the law of truth and unrit. अभी वो आती है ना सत्य में वो जयते, heard about it ना, हमारे पार्लियामेंट में भी है. प्रश्न लोग आते हैं पुराना चीज, सत्य में वो जयते नानृतम. अगर विच्छेद करोगे ना अनृतम वो कंबाइन हो जाते हैं. सत्य में वो जयते नानृतम सत्येन पंथा वितो देव्याना. इट इज ट्रूथ दैट विंस एंड नॉट अनृत. अनृत इज वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड. मिथ्या नहीं बोल रहे वहां पे. मिथ्या इज इजी टू अंडरस्टैंड. वट इज अनृत? अनृत इज दैट विच डेविएट्स फ्रॉम द लॉ ऑफ ट्रूथ. वट डज इट मीन डेविएटिंग फ्रॉम द, सपोजिंग विद इन यू देर इज ए स्क्रिप्ट. वो इसी चीज को श्री कृष्ण कैसे कहते हैं, श्री कृष्ण को थोड़ा माइल्डर वर्जन ला के कहते हैं, कहते स्वधर्मो निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह. द लॉ ऑफ ट्रूथ इज स्वधर्म, इज इन बिल्ट विद इन एवरी वन. ऋषि यज्ञवल्क प्रार्थना करते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य स्यापिहित मुखम तत्व पूषण पावरणु सत्य धर्माय दृष्टये. आई वॉन्ट टू नो द लॉ ऑफ ट्रूथ नॉट बाई एनी बुक रीडिंग. वट एम आई मेंट फॉर, इन मॉडर्न लैंग्वेज इट वुड बी मैं किस लिए बना हूं. That's called seeking the law of truth. You may not use Sanskrit, you may not know Sanskrit, but if you are looking for what am I meant for, not what society wants me to be, what the world wants me to be, but what is it, then you are a seeker of truth. Because it is this which the gods have made your path of progress through, that truth which is in your heart. That's why it says Satyena Pantha Vitato Devyana. The gods have paved your path of progress through the truth that is in your heart. And that will eventually be victorious. It's not victory over yourself. You will feel fulfilled. But Anritam is, for example, people will say, what's wrong in following your ambition and making money? Paap thodi hai. They have not used the word paap. Hum imandari se kamare ji paisa. Yehi bolte na log. हमने जीवन में कोई चोरी चकारी नहीं की. अरे बात ये नहीं है, आप बने किस लिए थे? अगर आपने वो जीवन नहीं जिया है, then there is perdition, परधर्मो भयावह. But somebody else, it may be another way. So that's how the Garur Puran doesn't have everything which can be called as authentic. So many Islamic attacks brought many elements. For example, one of them was concept of paap and punya. Too much. ये करो वो मत करो, ऐसे खड़े हो वैसे बैठो. हमारे यहाँ उसके ऊपर ओवरराइडिंग फैक्टर है ऑफ द ग्रेट वैदिक वेदांत. सो आप बोलोगे कि जमीन पर ऐसे बैठकर ही भगवान को बुला सकते हो, आपको कोट कर देगा यज्ञवल को, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत त्याम जगत. कहाँ लिखा है बोलो कि घुटने पर बैठ करके ऐसे हाथ उठाओ तो आप कहेंगे ठीक है भाई थैंक यू. बट वहाँ ये नहीं है, कंसेप्ट नहीं है. तो वहाँ बहुत ज़्यादा पाप और इसका बहुत स्ट्रांग है. मतलब अगर पढ़ोगे आप कुरान तो लगे भगवान को जज करने के अलावा कोई और काम ही नहीं है. पनिश ही करता रहता है बेचारा कितना, मतलब और उस हर चीज़. तुमको ऐसे जिंदगी जीनी है. एक बार मैंने पूछा किसी मुस्लिम से, भाई तू इतना सब कुछ करता है तो तेरे तो जो अल्लाह की बात करता है वो है क्या, कैसे है? कहता है नहीं नहीं उसी वो सब अल्लाह वगैरह कुछ नहीं है. Oh, you have to live according to what is written. नहीं तो भगवान ही तुम्हारा बाप फूट जाएगा. मैं कहा अच्छा वहां तक ठीक है, दूसरों को क्यों मार रहे तू? ये भी उन्होंने कहा है, हम सबको सही रास्ते लाएंगे. सही रास्ते क्या है? जो कुरान में लिखा है वो सब फॉलो करेंगे. हमारे यहाँ तो सीट ऑफ ट्रूथ इज इन द हार्ट, फाइनल ट्रम्प कार्ड. सो ये सिचुएशन है. ये दीज आर फैक्ट्स एक्चुअली. आई एम नॉट, I've read the Quran, okay, by the way, so I can tell you with authenticity, also the Bible and New Testament. Old Testament I've read portions, didn't much, they are old stories, nice stories. New Testament is basically teachings of Christ through stories, nice parables. Nothing deep and profound like Vedanta and all that, but that apart. So Garur Puran, you will see a lot of this papa punya, roast in hell, ko khalta hua kade mein dal dete, pata nahi. पता नहीं वहाँ नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, कैसे आपको फील होता है आई डोंट नो. उसके बाद फिर डबल भी है. अच्छा वहाँ तो हो गया. इस क्वेश्चन को शेयर में जोकिंग भी देते हैं, कहते ये तो डबल पनिशमेंट हो गया. बट ही कोट्स फ्रॉम द बाइबल, इसे इसकी कहते हैं कि पहले तुमको हेल में पनिशमेंट मिलता है, फिर तुमको एक दिन छः महीने में नॉर्थ पोल में बर्फ पे बैठने को मिलता है. वन डे आफ्टर सिक्स मंथ्स ऑफ बींग रोस्टेड इन हेल. I have often wondered whether this is a unique way of increasing your pain and suffering. अब छह महीने बंदा यूज तो हो गया है गर्मी में, अब आप उसको एकदम नेकेड नॉर्थ पोल पे ले जाके बिठा रहे हो तो वो कोई उसको कंफर्ट थोड़ी मिल रहा है. वो तो टॉर्चर की आपने उसके बाद फिर नया टॉर्चर दोगे छह महीने. सो ये सारी जो चीजें ये कंटेमिनेशन है, क्योंकि पुराणों में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से whether it's 1%, 2%, lot of hodgepodge has taken place. That they are anyway part of Smriti literature. They are not to be taken with 100% authentic. So, मैंने तो जब पढ़ा मैंने कहा हे भगवान ये क्या क्या है, कहाँ है, कहीं पर नहीं लिखा है किसी और इंडियन लिटरेचर. जैसा भयाव है रौरव नरक कुंभी पाक पीप, तुम्हारी पीप से कुछ बना हुआ है उसमें तुम जाके डूबते हो. मैंने कहा भैया ये तो टॉक्सिक हो रहा है बहुत ज़्यादा. Now, but why? Because there was so much fear was brought in. Fear is a typical Islam. गॉड फियरिंग. और भारत ने क्या दिया? श्री राम के परमहंस की सही है, मोहम्मद गेव फियर ऑफ गॉड. इंडिया ने क्या दिया? लव ऑफ गॉड. लव ऑफ गॉड. जस्ट सी दे आर एट टू अपोजिट पोल्स. बी अफ्रेड नहीं तो क्या होगा? अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो. यार एक समय बाद तुम डरने ही खत्म हो जाता है, फिर तुम जो चाहे करते हो. कहते हो गया कितने दिन डर, हर जगह डर है. तो लोग कई बार कहते हैं कि वो सिगरेट नहीं पीते, वो शराब नहीं पीते, मैंने हाँ वो डर के कारण नहीं पीते, डर को ही पीते रहते हैं, फिर वो एग्रेशन में बदल जाता है. बिकॉज इफ यू कीप द पॉइजन ऑफ फियर इन साइड, आई हैव सेड दिस टू एवरीबडी एंड आई एम वेरी वोकल अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो इफ यू कीप ऑन ड्रिंकिंग फियर, देन वॉट हैपन्स, दैट फियर विल चेंज इन टू एग्रेशन. ये साइकोलॉजी में है, एंगर फियर डिप्रेशन आर थ्री साइड्स ऑफ वन कॉइन. चेहरा बदल जाता है, चीज वही है. दे आर सो अफ्रेड. अब क्या है ना, वो एग्रेशन अंदर में जमा होता है और भगवान हर समय आपको डर ही डर दे रहा है, तो आप कहीं तो निकालोगे, तो किस पर निकलता है? ऑर्डनरी निरी जीव जंतुओं पे, जीव जंतुओं पे भी नहीं हुआ तो मनुष्यों पे. इट्स दैट फियर, एंड दैट्स वाई देर इज दैट एडवांस कि भाई वी आर प्रताड़ित. कभी कभी लोग पूछते हैं मुझसे, आई एम सॉरी टू स्पीक ऑन अ टेबू सब्जेक्ट बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई व्यूज, नॉट टू कन्विंस एनी वन. टेबू सब्जेक्ट क्या है कि भाई बहुत ये डरे हुए हैं, इनको कई इस्लामोफोबिया इज अ टर्म विच इज यूज. मैंने कहा हाँ, लेकिन उनका ओरिजिनल डर तो उनको अपने अल्लाह से है, और कौन डरा रहा है? इफ यू सी रीड, इट्स रियली फुल ऑफ फियर. सो गरुड़ पुराण इज ए कॉन्टेमिनेटेड लिटरेचर, उसमें सच भी है कई चीजें, बट दे आर मेनी थिंग विच आर मिक्सड इन इट. दैट्स दोस्त, हमने कहा हम एक कदम आगे जाएंगे तो लिटरेचर में ऐसे ऐसे नरक बना दिए जो बाप रे बाप. सुन के लगता है तो पाप ही कर लो यार ये बात देखो. पर जो सूफी मिस्टिक्स हैं वो समझते थे टू द गुड साइड. हर जगह देर हैव बीन इवॉल्व पीपल. सो इस्लाम में सूफी मिस्टिक्स समझते थे तो उन्होंने, लेकिन वो क्यों नहीं लिख पाते थे ओपनली? बिकॉज सर तन से जुदा हो जाएगा. तो वो कैसे लिखते थे? आपको दे यूज लैंग्वेज विच कुड बी अप्लाइड इन टू वेज. फॉर एग्जाम्पल दो मैं तुमको बताता हूँ. एक है वो कहते हैं शेख, शेख मतलब वो जो लॉ मेकर हैं, बैठे हैं जल्लाद जो एक्सिक्यूट कर रहे हैं मुल्ला मौलवी टाइप, कहते हैं ऐ शेख क्या पाएगा तू गुलफिशानी करके. तो भगवान की बड़ी प्रेस कर रहा है, गुल इसिया फुल दे रहा है, वो दे रहा है, चढ़ा रहा है. फिर वो आगे कहता है क्या पाएगा. अब इसको बाहर से सुनोगे तो तुमको बड़ा अजीब लगेगा. तौहीन जवानी करके, ये ना करो वो ना करो, ये ना करो वो ना करो. फिर आगे कहता है तू आतिश दोजक से डराता है उन्हें, भाई पाप लगेगा, वहां जाएगा इस नरक में, वहां हेल में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा. तो आतिश वहां की आग, आतिश दोजक से डराता है उन्हें जो आग को पी जाते हैं पानी करके. कौन सी आग है? That about that inner fire. या हमने अपने हृदय में वो आग जलाई हुई है, तो मैं दुजक से मत डराओ. हमारे यहाँ ऐसी स्टोरी है मांडव ऋषि की, जो यमराज को कहते हैं इज दिस योर न्याय, जिसके श्राप के कारण मांडव ऋषि जन्म लेते हैं विदुर. विदुर इस यम के जो धर्म के पुत्र हैं. बिकॉज ही टेल्स हिम व्हाट काइंड ऑफ ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस यू हैव, दे हैड दैट पावर. एक और है, सुना होगा तुम लोगों ने ये वाला जरूर, पता नहीं पर बड़ा फेमस है. मेहदी हसन ने भी गाया, गुलाम अली ने भी गाया. ये है हंगामा है क्यों बरपा. सुनी नहीं? हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है. डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं किया. बाहर से लगता है यार बात सही है, लेकिन वो बड़ी प्रोफाउंड है. ओके, इट स्टार्ट्स लाइक दैट. हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है. डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं किया. आगे वो कहता है उसमें से नहीं मतलब, दिल जिससे हो बेगाना. कहता है मैं उसमें की नहीं बात कर रहा हूँ, शराब की जिसे आदमी भूल जाता है. मैं उसमें की बात कर रहा हूँ जो दिल ही में जो उतरी है. दे यूज टू डू दिस बिकॉज यू नो दे कुंट राइट ओपनली. राइट ओपनली दे वुड बी किड. अब तो खत्म ही हो गए सारे. दैट्स वाई इस्लाम इज नॉट गॉन, बिकॉज उसके अंदर जो पॉसिबिलिटी थी इवोल्यूशन की वो सूफिज्म में थी. आई विश इट वॉज प्रिजर्व, इट वॉज होप फॉर दैट होल वर्ल्ड. नाउ इट्स ऑलमोस्ट गॉन, हार्डली यू विल फाइंड. इवन इन पाकिस्तान नुसरत फतेह अली तो जब मरा तो उन्होंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे इसके जनाजे में कोई नहीं जाएगा ऑफिशियली. पुअर फेलो वाज बरीड अलोन. सुने ये सब कि नहीं सुने? कहो भैया सुना हो? अमिता परवीन को नहीं सुना है? अरे यार जी चाहे, अब देखो मेरा मोड़ी बोल तूने बोल जी चाहे वो देखो एम ऑफ लाइफ बता रहा है। ओके इसके साथ भी क्लोज ओके 11:05 वो कहता है जी चाहे तो शीशा बन जा, जी चाहे पैमाना, पैमाना इज द ग्लास, सो आइदर यू बिकम जस्ट द ग्लास और यू बिकम द कप व्हिच बेयर द वाइन। जी चाहे तो शीशा बन जा, जी चाहे पैमाना, शीशा पैमाना क्या बनना, मैं बन जा, मैं खाना बन जा। फिर आगे ले जाता है ऐसे करके दो चार, उसके बाद कहता है इस बनने में, इस होने से अच्छा है दीवाना बन जा, दीवाना बनने से अच्छा रूह के नूर की ठंडक बनना। वो कहता है रूह के नूर की ठंडक बन जा, अहले कदम ओके फॉरगॉटन दैट लाइन बट बेसिकली रूह की आंख का सुरमा बन जा, रूह यू अंडरस्टैंड ना सोल द स्पिरिचुअल रूह, उसकी आंख का सुरमा बन जा, उसकी आंख में बन जा, या उसके चरणों की धूल बन जा। फॉरगेटिंग दैट लाइन बट इट मीन्स दैट एंड एट द एंड ही से समथिंग वेरी मार्वेलस। वो कहता है सीख जहीन इज द पोएट, कहता है सीख जहीन के दिल से जलना, सीख जहीन के दिल से जलना, काहे को हर शम्मा पे जलना, अपनी आग में खुद जल जाए तो ऐसा परवाना बन जा। I wish I could tell you, but please Google search and see. So, okay, एक तो लाइन ना दें, मैं नहीं ओरिजिनल हाँ अविता परवीन ने तो बहुत अच्छा गाया, डोंट नो हु इज गोइंग टू, ओ इसमें तो पूरी वो पंक्तियां आ गई। ओके चलो ये पढ़ देता हूं मैं, बाद में तुम सुन लेना अविता परवीन का सर्च करके, क्योंकि हमने वो पंक्तियां पूरी नहीं पढ़ी थी तो लेट्स मी जस्ट यू नो। अरे यार इवेंट नहीं चाहिए, बुक ना हो सीधा वो बाजार वाले आ जाएंगे। जी चाहे तू शीशा बन जा, जी चाहे पैमाना बन जा, शीशा पैमाना क्या बनना, मैं बन जा, मैं खाना बन जा। ये तो दो लाइन से ही थे। मैं बनकर, मैं खाना बनकर मस्ती का अफसाना बन जा, डिलाइट, मस्ती का अफसाना बनकर हस्ती से बेगाना बन जा, यार ईगो से नहीं, हस्ती से बेगाना होना मस्ती का अफसाना बनना। व्हेन द ईगो इज लॉस्ट देन यू लिव इन डिलाइट। इस होने से, इस बनने से अच्छा है दीवाना बन जा, यू विल स्टार्ट वाली का मैड। ओके तुम भी बोलते हो ऐसे पीछे सर थोड़े नहीं बोलते, यहां तुमको कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। दीवाना बन जाने से भी दीवाना होना है अच्छा, दीवाना होने से अच्छा खा के दरे जाना ना बन, डस्ट बिलो द फीट ऑफ द लॉर्ड। दीवाना बनने से अच्छा खा के दरे जाना ना बन जा, खा के दरे जाना ना क्या है, अहले दिल की आंख का सुरमा, यू ड्वेल्स इन योर हार्ट, ही पिक्स दैट अप द डस्ट बिलो हिज फीट इन योर प्रोस्टेट एंड पुट्स इट इन हिज आईज। आंख का सुरमा शम्मा के दिल की ठंडक बन जा, जो फीट के जो पार्ट होता है ना सेंटर इज एब्सोल्युटली इट डजंट बर्न, आई होप यू नो दैट नो। अहले दिल की आंख का सुरमा शम्मा के दिल की धड़कन बन जा, नूर दिले परवाना बन जा, सीख जहीन के दिल से जलना, काहे को हर शम्मा पे जलना, अपनी आग में खुद बन जल जाए तू ऐसा परवाना बन जा। बहुत लोगों ने गाया है अविता परवीन का सुना, एटलीस्ट मेरा तो वही उसका फेवरेट है। and enjoy. ठीक है.